ये बात सोचकर इप्सिता को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें मिस्टर अभिमन्यु की बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? वो तो मुझे शायद अपनी मंगेतर मानते ही नहीं हैं, इसीलिए तो उन्होंने बिना किसी झिझक के ये बात बोल दी। लेकिन हम ये बात सोच सोच कर क्यों लो रहे हैं? हमें क्यों इतना बुरा लग रहा है? और रही बात मम्मी पापा की, तो हम उन्हें माफ़ी मांग लेंगे। इप्सिता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये बात बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा रही थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और वो इस तरह रोते रोते सो गई। अभिमन्यु अपने ऑफिस की मीटिंग में फंस गया था, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में बार बार इप्सिता का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जिस तरह से इप्सिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो इतनी परेशान होकर केबिन से बाहर गई थी, उसे देखकर अभिमन्यु का दिल बैठ गया था। अभिमन्यु अभी मीटिंग में था, लेकिन उसका मन मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई, अभिमन्यु तुरंत केबिन से बाहर निकला। तभी अभिमन्यु की असिस्टेंट मानसी ने उसे इस तरह से भागते हुए देखकर अपने मन में कहा, ये अभी सर को क्या हुआ? वो इस तरह इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु सीधे अपनी कार में आकर बैठ गया और उसने अपने ड्राइवर को निर्देश देते हुए कहा, सीधे सूर्यवंशी हवेली चलिए। ड्राइवर ने तुरंत कार मोड़ी और कुछ ही देर में अभिमन्यु सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंच गया। वहां सुहासिनी जी लैपटॉप पर ऑफिस का कोई काम देख रही थीं। जैसे ही उनकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, उन्होंने लैपटॉप बंद किया और तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। अपनी साड़ी का पल्लू दूसरे हाथ में थामते हुए बोली, कुंवर सा, आप यहाँ? अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, जी आंटी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हम बिना आपको सूचित किए ही यहाँ आ गए। हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। सुहासिनी जी ने तुरंत अभिमन्यु की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बैठिए, और वैसे भी ये आपका ही तो घर है, आप किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। आपको हमें सूचित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हमें राजकुमारी इप्सिता से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? सुहासिनी जी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इजाज़त वाली कौन सी बात है बेटा? अब तो इप्सिता आपकी पत्नी बनने वाली है, तो उनसे बात करने के लिए आपको हमारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप बैठिए, हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं। सुहासिनी जी इतना बोलकर इप्सिता को बुलाने उसके कमरे में चली गईं। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, पत्नी बनने वाली थी, लेकिन अब तो राजकुमारी इप्सिता ने सगाई ही तोड़ दी है। पता नहीं उन्होंने अपनी माँ को अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई। वैसे अच्छी ही बात है, अगर नहीं बताई तो हम उन्हें समझा सकते हैं। बस वो हमारी बात एक बार सुन ले और हमसे मिलने के लिए मना ना करें। अभिमन्यु ये सारी बातें वहीं हॉल में बांटकर सोचने लगा। सुहासिनी जी जल्दी से इप्सिता के कमरे में गई। इप्सिता अपना कमरा लॉक करके सो गई थी। तभी सुहासिनी जी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, इप्सिता बेटा, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। इप्सिता काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी माँ की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी सुहासिनी जी ने इप्सिता का नंबर डायल किया। इप्सिता ने नींद में अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन है? इप्सिता की माँ ने कहा, बेटा, हम आपके कमरे के बाहर हैं, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? फ़ोन कॉल पर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर इप्सिता हड़बड़ाते हुए उठ गई और उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, सॉरी मम्मी, हम थक गई थी, इसलिए पता नहीं कब हमारी आँख लग गई, हमें पता ही नहीं चला, आई एम सॉरी। सुहासिनी जी ने इप्सिता को सिर से लेकर पाँव तक देखा। इप्सिता ने अपने प्यारे टेडी बियर प्रिंट वाले नाइट सूट पहने हुए थे। सुहासिनी जी ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा आपने? आपको पता भी है कुंवर साहब से मिलने आए हैं, जल्दी से कपड़े बदलिए और नीचे आ जाइए। इप्सिता ने जैसे ही अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो वो चौंकते हुए बोली, क्या कहा मम्मी आपने? कौन मिलने आया है हमसे? सुहासिनी जी पीछे मुड़ी और इप्सिता के चेहरे को छूते हुए बोली, आपकी तबीयत खराब है क्या? हमने कहा ना, कुंवर साहब से मिलने आए हैं और इतनी देर से हम इसीलिए आपका दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन आपने दरवाज़ा खोला ही नहीं, पता है कितनी देर से नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। इप्सिता के मन में अभी भी वो सारी बातें बिल्कुल ठीक तरह से याद थीं। उसने अपना हाथ बांधकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मम्मी, आप कुंवर साहब को जाकर मना कर दीजिए, हमें उनसे नहीं मिलना है और ना ही कोई बात करनी है। सुहासिनी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो इप्सिता के सामने आई और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या कहा आपने, एक बार फिर से कहिए। इप्सिता ने बिना किसी झिझक के अपनी बात दोहराते हुए कहा, मम्मी, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। सुहासिनी जी गुस्से से इप्सिता को घूरते हुए बोली, आप होश में है ना इप्सिता? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? कुंवर साहब के होने वाले पति हैं, आप उनसे बात ना करने के लिए मना कर रही हैं। होश में आइए और चलिए हमारे साथ नीचे।
इतना बोलकर सुहासिनी जी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आई। इप्सिता ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मम्मी आप हमसे पूछेंगी नहीं कि हम मिस्टर अभिमन्यु से बात करने के लिए क्यों मना कर रही हैं? सुहासिनी जी ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, नहीं हम आपसे ये बात नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा और आप अभी हमारे साथ नीचे चल रही हैं। और याद रखें इप्सिता, आपकी वजह से हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारी सारी बातें मानेंगी, भूल गई हैं कि आप अपना वादा? और ये मत भूलिए अब आप राजवंशी परिवार की बहू बनने वाली हैं, आपकी एक गलती सूर्यवंशी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, क्या आप यही चाहती हैं? सुहासिनी जी का उपदेश सुनकर इप्सिता ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। सुहासिनी जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए हमारे साथ नीचे और खबरदार अगर आपने कुंवरसा के साथ कोई भी उल्टी सीधी बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इप्सिता ने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया और सुहासिनी जी के साथ नीचे की तरफ जाने लगी। इप्सिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तभी अभिमन्यु की नजर उस पर गई। इप्सिता का टेडी बियर पेंट वाला नाइट सूट और उसके खुले बाल उसे बहुत प्यारा लुक दे रहे थे। इप्सिता के चेहरे पर इस वक्त पिंक लिप बाम के अलावा और कोई मेकअप नहीं था, फिर भी इप्सिता काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया क्योंकि उसने शायद ही आज तक इतनी प्यारी और सुंदर लड़की को देखा हो जो बिना मेकअप और बिना किसी प्रयास के भी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही है। खैर कारण जो भी हो, लेकिन इस समय अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही इप्सिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई, सुहासिनी जी ने इप्सिता को इशारों ही इशारों में अभिमन्यु से ठीक से बात करने के लिए कहा और अभिमन्यु की तरफ देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, कुंवरसा आप बैठिए, इप्सिता से बातें करिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। जैसे ही सुहासिनी जी वहां से दूसरे कमरे में गई, इप्सिता अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाईं, वहीं अभिमन्यु बस इप्सिता को एकटक देखे जा रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी इप्सिता कृपया बैठ जाइए।
अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अभिमन्यु ने कहा, आई एम सो सॉरी इप्सिता, हम जानते हैं हमने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं था। कृपया एक बार बैठिए और हमारी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो या आपको ऐसा लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप बेझिझक इस रिश्ते को तोड़ दीजिएगा। हम आपको मना नहीं करेंगे, यहां तक कि हम खुद मासा से बात कर लेंगे, लेकिन कृपया उससे पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। इप्सिता ने पहले तो सोच लिया था कि वो अभिमन्यु की कोई भी बात नहीं सुनने वाली है, लेकिन अभिमन्यु के इतना अनुरोध करने पर उसने बिना अभिमन्यु की तरफ देखे ही सोफे पर बैठते हुए कहा, बोलिए क्या बोलना है आपको? अभिमन्यु ने उसके बगल में ही बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, और सच बताएं तो हमने उस समय फ़ोन पर जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल अनजाने में बोला, क्योंकि सच बताएं तो हमें आपके ऑफिस आने का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और हम अभी इस सगाई को सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। हमें लगा शायद हमारे दोस्त हमसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ही हमने ये बात बोली कि हमारी कोई मंगेतर नहीं है। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ध्यान से उसकी तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु ने आगे बोलना जारी रखा, और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये सगाई टूटी तो हमारे परिवार के साथ साथ आपके परिवार में भी काफ़ी सारी समस्याएं होंगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी एक गलती और इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से दो परिवारों के बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी आए, इसलिए कृपया एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करिए और इस सगाई को मत तोड़िए। क्रमशः